तारा परी को कंपनी में जल्द से जल्द जाना था। उसकी ड्रेस बदल चुकी थी, इसलिए कपड़ों के गायब होने का कोई डर नहीं था। वो जल्दी से कंपनी की ओर जाने लगी। कंपनी और उसके घर के बीच केवल एक ही सड़क थी। तारा परी जल्दी से सड़क पार करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा गेंद से खेलते हुए सड़क पर आ पहुंचा था। पास में ही एक पार्क था, शायद बच्चा खेलते खेलते सड़क तक आ गया था। परी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले कंपनी जाए या बच्चे की जान बचाए। बच्चा किसी भी समय गाड़ी के नीचे आ सकता था। तारा परी ने आसपास देखा तो बच्चे की माँ दिखाई दी। उसकी माँ पार्क में खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। गाड़ी बच्चे को कुचलने से पहले ही अदृश्य रूप से तारा परी वहाँ पहुँच गई। उसने बच्चे को वहाँ से हटाकर पार्क के पास छोड़ दिया और फ़ोन पर बात कर रही माँ के सिर पर एक छोटा सा पत्थर मार दिया, जिससे उसका ध्यान बच्चे की ओर गया। फिर जल्दी से तारा परी अपनी कंपनी की ओर दौड़ी और कुछ मिनटों में ही अपने डेस्क पर पहुँच गई। तारा परी ने अपने आसपास देखा, किसी ने उसे नहीं देखा था। वो जल्दी से अपना काम खत्म करने लगी। उसने अपने सिस्टम ऑन ही किया था कि अमित वहाँ आ गया। तारा परी अमित को देखकर घबरा गई। अरे मिस तारा, अभी तो मैं आपके केबिन से गया था, तब तो आप नहीं थी, फिर अचानक से आप कहाँ से टपक गई, अमित ने अपनी छिछोरी भाषा में कहा। तारा परी खुद को संभालते हुए बोली, वो सर मैं यहीं थी, हाँ बस कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी। ओ अच्छा, छोड़ो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। तारा परी, आपके साथ? लेकिन कहाँ? वो अमन ने तुम्हें बुलाया है, उसके सख्त ऑर्डर है तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर उसके सामने लाया जाए। तारा परी सोच में पड़ गई कि वो अमित के साथ अमन के केबिन में जाए या ना जाए, लेकिन आखिरकार वो उसका बॉस था और अब वो उसके घर पर भी रहती थी। अमन से वो किसी भी कीमत पर नहीं भाग सकती थी, इसलिए उसने अमन का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने गले के इलाके को एक दुपट्टे से अच्छे से छुपा रखा था। अमन ने जब उसका गला दबाया था तो उसकी उंगलियों के निशान उसके पूरे गले पर आ गए थे। तारा परी सोच रही थी, आखिर कौन है इन माँ बेटों के दुश्मन जिनका डर इन्हें नींद में भी रहता है। अमन ने तारा परी का गला किसी बेनाम दुश्मन समझकर ही दबाया था। तभी अमित तारा परी को सोच में गुम देखकर अपना गला ठीक करने लगा और खैर रह करके कहने लगा, मिस तारा आप क्या सोच रही हैं, मेरे साथ चलिए, अमन आपको बुला रहा है। तारा परी ने हाँ में सिर हिला दिया और अमित के पीछे पीछे अमन के केबिन की ओर चल दी। वहीं अमन तारा परी को लेकर परेशान था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी, वो ठीक है या नहीं, आखिर एक जिन का वार उसने सह लिया था वो कैसे ठीक हो सकती थी, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे और उसे ठीक करूं, मुझे पता है वो बहुत दर्द में होगी। अमन तारा परी को लेकर उल्टी सीधी बातें सोच रहा था कि तभी अमित उसके केबिन में आ गया। अमित के केबिन में आते ही अमन ने ढेर सारे सवाल करना शुरू कर दिए, मिस तारा मिली या नहीं मिली है, कहाँ तुमने ढूंढा। तब अमित ने कहा, रिलैक्स रिलैक्स मेरे भाई, क्या हो गया है, मिस तारा मिल गई हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं, और तू एक बात बता मुझे, तुझे कब से किसी की इतनी फिक्र होने लगी है, जबकि तुझे तो नफरत है लड़कियों से, फिर ये सब क्या है भाई। तब अमन गुस्से से बोला, अमित अभी मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, बस मुझे इतना बताओ मिस तारा कहाँ है। अमित ने कहा, ठीक है भाई, कुछ नहीं बताना चाहता तो मत बता, बट एटलीस्ट गुस्सा मत हो, और रही बात तेरी मिस तारा की, तो वो यहीं है, तेरे केबिन के बाहर ही खड़ी है, रुक मैं उसे अंदर भेजता हूँ और खुद चला जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है तुझे अब मेरी और ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर अमित गुस्से से अमन के केबिन से बाहर निकल गया और बाहर खड़ी तारा परी को गुस्से से अंदर जाने को कहा। तारा परी थोड़ी सी झिझक के साथ अमन के केबिन में एंट्री करती है। वो देखती है अमन बिल्कुल सामने ही खड़ा था। तारा परी को सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आती है। वो एक झटके से उसके करीब चला जाता है और पूछता है, कहाँ गायब हो गई थी तुम। तारा परी अपने आप को संभालते हुए जवाब देती है, क्यों रुकती मैं यहाँ पर ताकि आप मेरी पूरी जान ले पाते। तारा परी ने झट से जवाब दिया। अमन ने तारा परी का दुपट्टा खींचना शुरू कर दिया। तारा परी बोलती रही, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ो मुझे, लेकिन अमन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने उसका दुपट्टा अलग कर दिया। उसने देखा कि तारा परी के गले पर बड़े बड़े गहरे निशान बने हुए थे जो अब काले पड़ चुके थे। अमन ने तारा परी को एक कुर्सी पर बैठाया। तारा परी उसे रोकती रही, लेकिन उसके कुछ भी कहने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अमन ने तारा परी की गर्दन पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ ही मिनटों में तारा परी के जख्म और निशान सब भर गए थे। अमन तारा परी को इसीलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता था कि एक जिन ने उसका गला दबाया था, जिसकी वजह से तारा के गले पर मौजूद काले गहरे निशान बने होंगे, जो भरने के बजाय धीरे धीरे और गहरे होते जाएंगे, और केवल दो दिनों के अंदर ही वो उस इंसान की जान ले लेंगे, इसलिए उसका इलाज करना बहुत जरूरी था। इसलिए अमन ने जल्दी से तारा परी का इलाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन तारा परी अच्छी तरह जानती थी कि अमन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसका जख्म ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक परी थी और एक परी जब तक खुद न चाहे उसका जख्म ठीक नहीं हो सकता था। इसलिए तारा परी ने अमन की शक्तियों के बीच अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते तारा परी का जख्म भर चुका था। अमन को लगा था कि यह उसके मंत्र से भरा था। जख्म भरने के बाद अमन ने तारापरी की याददाश्त मिटाने का फैसला किया। देखते ही देखते जो जहां था वो वहां रुक गया। सब कुछ पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। अमन ने तारापरी के माथे को छुआ और फिर कुछ पढ़ने लगा। उसके ऊपर एक फूंक मारकर उसके पास बैठ गया। तारापरी बना पलक छपके उसे देख रही थी। हर बार की तरह वो फ्रीज नहीं हुई थी, केवल फ्रीज होने की एक्टिंग कर रही थी। तब अमन ने उसके गाल को प्यार से छुआ और बोला, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ा। ऐसा कहकर अमन ने चुटकी बजाई और पल भर में ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तारापरी मन ही मन बोली, अच्छा हुआ इस जिन ने चुटकी बजाई, वरना मैं तो अब अपनी पलक झपकने ही वाली थी। तारापरी ने भी सब कुछ भूलने की एक्टिंग की और बोली, सर इस फाइल के ईमेल मैच हो गए हैं, सो प्लीज आप इन्हें चेक करके सिग्नेचर कर दें। अमन ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। ऐसा अकरसी में कहकर अमन ने तारापरी को भेज दिया और खुद राहत की सांस ली। आखिर जो वो चाहता था वो हो चुका था। वेल, आज का दिन पूरा होने वाला था। लगभग अमन का सारा स्टाफ अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। तारापरी अमन का वेट कर रही थी। उसने सोचा था कि वो उसके साथ ही घर चली जाएगी, लेकिन काफी देर वेट करने पर भी जब अमन नहीं आया, तारापरी उसके केबिन में चली आई। उसने देखा अमन अभी भी अपने सिस्टम पर काम कर रहा था। तारापरी ने उसे आराम से काम करते देखा तो बोली, सर काफी देर हो गई है, हम घर कब जाएंगे? अमन ने अपनी नजरें उठाकर तारापरी को देखा और बोला, व्हाट यू मीन, हम कब जाएंगे? मैंने आपको कब रोका है? अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है तो आप जा सकती हैं।
तारापरी ने जैसे ही ये सुना वो शॉक्ड हो गई और बोली, तो क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? तब अमन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अगर मैंने एक दो दिन तुम्हें लिफ्ट दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हो गया हूँ। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, सिर्फ दो तीन दिन और रह सकती हो तुम मेरे घर पर, तब तक अपना कहीं जुगाड़ कर लो, ओके? मैं ज्यादा दिन किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अमन ने तारापरी की इंसल्ट करते हुए कहा था। तारापरी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और वो सोचने लगी, फ्रीज करने पर तो ये अपनी मोहब्बत का दावा करता है और नॉर्मल करने पर ऐसा बर्ताव करता है, आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? वेल, अमन की बात सुनकर तारापरी ने भी उसी टोन में जवाब दिया और बोली, एक्सक्यूज मी सर, मुझे कोई शौक नहीं है आपके महंगे बंगले में रहने का या आपकी गाड़ी में बैठने का। शायद आपको याद नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आप ही मुझे ज़बरदस्ती अपने उस भूत जैसे बंगले में ले गए थे और उस दिन आपने ही ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में भी बिठाया था, और आज अगर आपसे पूछ लिया तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो मैंने ही सब कुछ किया था। मैंने गलती कर दी जो आपसे घर चलने के लिए पूछ लिया, मैं जा रही हूँ, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर तारापरी गुस्से से अमन के केबिन का दरवाज़ा पटकती हुई बाहर निकल गई। अमन उसके इस व्यवहार पर मुस्कुरा दिया। तारापरी ऑफिस से निकलकर सीधा मेन रोड पर आ गई थी। वो अभी रिक्शा का वेट ही कर रही थी कि तभी अचानक एक साया बहुत तेज़ी से उसके पास से गुजरा। तारापरी का हाथ उससे टच हो गया था। उस साये से हाथ टच होते ही तारापरी की आँखें बंद होने लगीं और उसे विजुअल दिखाई देने लगे थे। तारापरी ने देखा कि उस साये के साथ और भी साये थे और वे सब के सब अमन के बंगले में गए और उन्होंने करिश्मा जी पर हमला कर दिया था। तारापरी अभी देख ही रही थी कि अचानक वो रोड पर ही गिर पड़ी।